ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी माघ 9 गते होने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के 18 पदों के लिए 45 लोगों ने दी उम्मीदवारी। इसी पूर्व 23 गते बुलाई गई नेकपा केंद्रीय कमेटी की बैठक आगामी माघ 15 गते तक के लिए स्थगित करने का नेकपा सचिवालय का निर्णय। और इराकी संसद ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा सभी विदेशी सैनिकों से देश छोड़ दे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 18 पदों के लिए आगामी माघ 9 गते होने जा रहे चुनाव में 45 लोगों ने उम्मीदवारी पंजीकरण करवाया है। चुनाव के लिए देश के 7 प्रदेशों में आज सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मनोनयन पत्र दर्ता शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की जानकारी निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद गौतम ने दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश नंबर 1 में महिला, दलित और अन्य समूह के एक एक पद के लिए 3-3 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। प्रदेश नंबर 2 में महिला, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य समूह के एक एक पद के लिए 2-2 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। इसी तरह प्रदेश नंबर 3 में महिला और अन्य समूह के एक एक पद के लिए 3-3 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। गंडकी प्रदेश में महिला और अन्य समूह के एक एक पद के लिए महिला की ओर से 2 और अन्य समूह की ओर से 3 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। प्रदेश नंबर 5 में महिला 1, अल्पसंख्यक 1 और अन्य समूह के एक एक पद के लिए क्रमशः 2, 3 और 4 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। कर्नाली प्रदेश में महिला के 1 और अन्य समूह के एक पद के लिए 2-2 लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। सुदूर पश्चिम प्रदेश में महिला और अन्य समूह के एक एक पद के लिए 2-2 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। 59 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा के 19 लोगों का आगामी फागुन 20 गते पदावधि समाप्त होने जा रहा है। पदावधि समाप्त होने वाले सदस्यों में से एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की इसी पूस 23 गते से शुरू होने वाली केंद्रीय कमेटी की बैठक स्थगित हुई है। आज सुबह प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय की बैठक ने आगामी माघ 9 गते को होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कमेटी की बैठक स्थगित की। ये जानकारी नेकपा ने दी। सचिवालय की बैठक ने केंद्रीय कमेटी की बैठक आगामी माघ 15 गते बुलाने का निर्णय किया है। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने ज्येष्ठ नागरिक संबंधी आयन 2063 का पहला संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। संसदीय सुनवाई समिति ने न्याय परिषद पद पर नवनियुक्त सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निरौला खड़का के नाम को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में संसदीय सुनवाई समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अधिवक्ता निरौला ने न्याय क्षेत्र के विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सदैव क्रियाशील रहने की बात बताते हुए न्याय परिषद को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निरौला खड़का को न्याय परिषद सदस्य पद पर नियुक्त किया था। दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि कर्मचारी अभाव के कारण स्थानीयतः विकास बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बैठक में सांसद दीनानाथ शर्मा ने ये बात कही थी। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोयराला ने कहा कि प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधी कार्यविधि कानून निर्माण न होने की वजह से कर्मचारी व्यवस्थापन में समस्या देखी गई है। मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग अंतर्गत निजगढ़ हेटौरा भरतपुर सड़क खंड का डीपीआर निर्माण के लिए समझौता हुआ है। रेल विभाग और परामर्शदाता एक कंपनी के बीच डीपीआर समझौता हुआ है। 15 महीनों के अंदर डीपीआर संपन्न करने के हिसाब से परामर्शदाताओं के साथ समझौता होने की जानकारी विभाग के महानिर्देशक बलराम मिश्र ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कहा कि राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारूढ़ दल नेकपाकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। प्रेस संगठन कञ्चनपुरद्वारा आज कञ्चनपुर के भीमदत्त नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता नेपालले कहा कि आने वाले राष्ट्रिय सभा चुनाव से नेकपा की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ेगी। गृहमंत्री राम बहादुर थापा चीन के मिनिस्ट्री के निमंत्रणा पर 6 दिनों के चीन दौरे के क्रम में आज राजधानी बीजिंग प्रस्थान किए हैं। भ्रमण के क्रम में चीन के जनसुरक्षा मंत्री तथा उच्च सरकारी अधिकारी तथा चीनियाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ भेंटवार्ता करने का उनका कार्यक्रम है। दलित सांसदों ने कहा कि सहभागितामूलक लोकतंत्र स्थापना का आंदोलन अभी भी जारी है। क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपाल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित मीडिया में दलित सांसद विषय कार्यक्रम में शामिल सांसदों ने कहा कि मौजूदा अवस्था में जातीय विशिष्टता को छोड़कर वर्ग की बातें सामने आना हमारे लिए चिंता का विषय है। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता मान बहादुर विश्वकर्मा ने कहा कि लंबे त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त उपलब्धियों को बचाना बहुत ही कठिन है। नेकपा के नेता छविलाल विश्वकर्मा ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ सत्ता में होने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी वर्गों और समुदायों के लिए होना चाहिए। नेकपा के नेता सुरेंद्र पांडे ने कहा कि नेपाल में उत्पादन होने वाले बहुमूल्य कृषि वस्तुओं की प्रशोधन कारखाना स्वदेश में ही स्थापना करनी चाहिए। आज झापा के अर्जुन धारा नगरपालिका में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता पांडे ने सबल अर्थतंत्र ही देश की समृद्धि का मुख्य आधार है बताया। विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर कृषि विकास बैंक का सिस्टम हैक कर रुपया निकालने वाले गिरोह के दूसरा नेपाली एजेंट गिरफ्तार हुआ है। बैंक हैकिंग कांड में शामिल होने के आरोप में मोरंग की रंगेली नगरपालिका 2 की 43 वर्षीय दीपक नेपाल को काठमांडू के बसुंधारा से गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी महानगरीय अपराध नियंत्रण महाशाखा ने दी। हैकिंग के मुख्य योजनाकार अफ्रीकी मूल के पीटर ने भारत में रहकर योजना बनाकर नेपाली एजेंट का इस्तेमाल किया था। ये बात तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चली है। इस अपराध में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी भी 15 लोग लापता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इराक की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी विदेशी सैनिकों से मुल्क छोड़ने को कहा है। ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने शुक्रवार को इराक की राजधानी बगदाद में मार दिया था। इसके बाद इराक की संसद ने यह प्रस्ताव पास किया है। इराक में अभी अमेरिका के पास 1000 सैनिक है। संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक की जमीन, हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाएगा। इराक की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमेरिकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाएगी। अल अरबिया के अनुसार इराकी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक से विदेशी सैनिकों को मौजूदगी खत्म करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक्कतें हैं लेकिन उससे इराक खुद निपट लेगा। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। आगामी माघ 9 गते होने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के 18 पदों के लिए 45 लोगों ने दी उम्मीदवारी। इसी पूछ 23 गते बुलाई गई नेकपा केंद्रीय कमेटी की बैठक आगामी माघ 15 गते तक के लिए स्थगित करने का नेकपा सचिवालय का निर्णय। और इराक की संसद ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा सभी विदेशी सैनिक से देश छोड़ दे। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।